नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस के रंगापानी स्टेशन पर एक मालगाड़ी से टकराने से 3 रेलवे अधिकारियों सहित 8 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। सिक्किम में भूस्खलन के कारण फंसे लगभग 2000 पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव कार्य शुरू। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज शाम बैठक करेंगे। भारत और अमरीका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक आज शुरू होगी। और देशभर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल में सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस के एक मालगाड़ी के टकराने से 3 रेलवे अधिकारियों सहित 8 लोगों की मौत हो गई और 50 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना आज सवेरे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन के पास हुई। रेलवे अधिकारियों के अनुसार मालगाड़ी सिग्नल से आगे निकल गई और कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गई। गाड़ी के पिछले हिस्से में 2 पार्सल वैन और गार्ड कोच लगे थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीड़ितों को बढ़ी हुई अनुग्रह राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2,50,000 और मामूली रूप से घायल लोगों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष जया वर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल रेल दुर्घटना का बचाव अभियान पूरा हो गया है। श्रीमती जया ने कहा कि सिग्नल की अनदेखी करने वाले मालगाड़ी के चालक और सहचालक तथा कंचनजंगा एक्सप्रेस के गार्ड की मृत्यु हो गई है। श्रीमती जया ने कहा कि हादसे में करीब 50 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों को उत्तरी बंगाल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि अगरतला सियालदह मार्ग पर सभी रेलवे स्टेशन पर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है।
जो गुड्स ट्रेन थी उसके ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर की भी जान चली गई है। जो कंचनजंगा के गार्ड थे उनकी भी जान चली गई है इस हादसे में। रेस्क्यू कंप्लीट हो गया है। जितने भी इंजर्ड लोग थे उनको वहां के बंगाल मेडिकल कॉलेज सिलीगुड़ी में वहां पहुंचा दिया गया है और उनको सारी सहायता दी जा रही है, सारी मेडिकल एड दी जा रही है। हमारा सबसे पहला काम यही है कि जितने भी लोग इंजर्ड हैं उनको बेस्ट मेडिकल एड मिले और उनकी जान बचाई जा सके।
श्रीमती जया वर्मा ने कहा कि शुरुआती जांच में मालगाड़ी के ड्राइवर द्वारा सिग्नल की अनदेखी सामने आई है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के तुरंत बाद सवेरे 8:55 पर बचाव अभियान शुरू हो गया। पश्चिम बंगाल में हुई रेल दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रेल दुर्घटना के कारण लोगों की मृत्यु दुखद है। उन्होंने कहा कि उनकी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोशल मीडिया पोस्ट में शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना काफी दुखद है। श्री मोदी ने रेलवे अधिकारियों से बात कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राहत और बचाव कार्य जारी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दुर्घटना स्थल पर पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बाढ़ प्रभावित सिक्किम के मंगन जिले के चुंगथांग में फंसे लगभग 2000 पर्यटकों को निकालने का काम आज फिर शुरू हो गया। मंगन के जिलाधिकारी हेम कुमार छेत्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि फंसे हुए पर्यटकों को प्रभावित क्षेत्रों से राजधानी गैंगटॉक पहुंचाना शुरू कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण पर्यटकों को एयरलिफ्ट नहीं किया जा सका। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
बाढ़ प्रभावित सिक्किम के मंगल जिले से 15 विदेशियों सहित फंसे हुए पर्यटकों को आज सुबह से चरणबद्ध तरीके से निकालना शुरू कर दिया गया है। मंगल जिला कलेक्टर हेम कुमार छेत्री ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि पहले चरण में 9 पर्यटकों को चुंगथांग क्षेत्र से सड़क मार्ग पर निकाला गया है और वे राज्य की राजधानी गैंगटॉक के रास्ते में है। यदि मौसम ठीक रहा तो आज शाम तक 50 और अधिक पर्यटकों को इस क्षेत्र से निकाला जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गैंगटोक से इबोमचा शर्मा।
इस बीच राज्य में लगातार वर्षा और भूस्खलन से अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारी वर्षा से राज्य की कई प्रमुख सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सीमा सड़क संगठन प्रभावित हिस्सों में सड़क संपर्क जल्द से जल्द बहाल करने का प्रयास कर रहा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए NCRB संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप एक व्यापक गाइड के रूप में कार्य करता है जो एक ही स्थान पर नए आपराधिक कानूनों के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करता है।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज शाम 4 बजे नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में केंद्र, राज्य सरकार, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 माओवादियों में से एक जोनल कमांडर मारा गया है। पुलिस ने बताया कि यह एक सुनियोजित हमला था। मारे गए नक्सलियों के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। झारखंड के पुलिस महानिरीक्षक ऑपरेशन अमोल वी होमकर ने बताया कि 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और अन्य माओवादियों को पकड़ने के लिए वन क्षेत्रों में तलाशी अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की 17वीं किस्त जारी करेंगे। किस्त की रकम सीधा 9,26,00,000 लाभार्थी किसानों के खाते में भेजी जाएगी। एक रिपोर्ट।
इस योजना के तहत अब तक 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ मिल चुका है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल शाम वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे। प्रधानमंत्री 19 तारीख को बिहार का दौरा करेंगे। वे नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर वे जनता को संबोधित करेंगे। विश्वविद्यालय परिसर के उद्घाटन समारोह में 17 देशों के मिशन प्रमुखों सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियां शामिल होंगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
दिल्ली में जल संकट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्य के कई हिस्सों में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली के लोकसभा सांसदों और कई भाजपा नेताओं ने हाथों में तख्तियां और खाली मटके दिखाकर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार पानी चोरी और कालाबाजारी रोकने में विफल रही है।
अगर ये पानी की चोरी, कालाबाजारी और ये बर्बादी रोक ली जाए, पानी का लीकेज रोक लिया जाए, तो दिल्ली को पूरा पानी मिल सकता है। दिल्ली में आज जो पानी के लिए हाहाकार मचा है, उसका कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार है।
इस बीच आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों का खंडन करते हुए जल संकट के लिए भाजपा को ही जिम्मेदार बताया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा दिल्ली में पानी के प्रवाह को रोकने की कोशिश कर रही है।
भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट चल रहा है, और जब मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित पानी का संकट, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि बीजेपी वाले चाहते हैं दिल्ली के लोग पानी ना पाए, दिल्ली के लोगों को पानी उपलब्ध ना हो।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए योग विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ डॉ सुरक्षित गोस्वामी और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग थेरेपी विभाग के डॉ ईश्वर एन आचार्य योग के विभिन्न पहलुओं तथा इसके महत्व और लाभों के बारे में जानकारी देंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 0112341050 और 0112331 4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पर भद्रासन करते हुए अपना एक वीडियो पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भद्रासन जोड़ों को मजबूत करने और घुटनों में दर्द को कम करने के लिए कारगर है, साथ ही पेट के लिए भी लाभकारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक आज नई दिल्ली में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलेवन दोनों देशों के रणनीतिक संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसमें तेजस Mark 2 लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन से संबंधित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भी शामिल है। इसमें द्विपक्षीय रक्षा औद्योगिक सहयोग की नई रूपरेखा पर भी विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलेवन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच व्यापक द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के पहले उच्च स्तरीय अमरीका भारत संवाद के अंतर्गत दोनों देशों के रणनीतिक साझेदारी फोरम की 7वीं वार्षिक लीडरशिप शिखर बैठक आज शाम वाशिंगटन में शुरू होगी। बैठक में दोनों देशों के नीति निर्माताओं, व्यवसाय जगत प्रमुखों, राजनीतिज्ञों, वरिष्ठ अधिकारियों और प्रमुख हितधारकों को विचार विमर्श का अवसर मिलेगा। आज देशभर में ईद उल अजहा मनाई जा रही है। इस अवसर पर ईदगाहों और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की जा रही है। दिल्ली में मुख्य नमाज जामा मस्जिद, फतेहपुर मस्जिद और शाही ईदगाह में हो रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद के पवित्र मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईद उल अजहा त्याग और बलिदान का त्यौहार है जो लोगों को अपनी खुशियां सभी के साथ बांटने का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोगों से एकता, दया भाव और एकजुटता के मूल्यों पर विचार करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर समाज में सद्भाव और एकजुटता के बंधन को और मजबूत करने की कामना की। 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज न्यूजीलैंड का मुकाबला पापुआ न्यू गिनी से होगा। ये मैच ट्रिनिडाड में भारतीय समय के अनुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले आज सुबह सेंट लुसिया में श्रीलंका ने नीदरलैंड्स को 83 रन से हराकर प्रतियोगिता में पहली जीत दर्ज की। 202 रन के लक्ष्य के जवाब में नीदरलैंड्स की टीम 16 ओवर और 4 गेंद में केवल 118 रन ही बना सकी। सेंट विंसेंट में ही एक अन्य मैच में बांग्लादेश ने नेपाल को 21 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने 19 ओवर और 3 गेंद में केवल 106 रन बनाए। जवाब में नेपाल की टीम 19 ओवर और 2 गेंद में केवल 85 रन पर ही सिमट गई। इस जीत से बांग्लादेश सुपर 8 में पहुंच गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष 29 जून से होने वाली 52 दिन की अमरनाथ यात्रा के लिए बालतल और पहलगाम दोनों यात्रा मार्गों के लिए यह सुविधा शुरू की है। उत्तरी कश्मीर बालतल मार्ग के लिए नीलग्रात पंजतरणी और पहलगाम के लिए पहलगाम पंजतरणी मार्ग पर हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में आज सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस से रंगापानी स्टेशन पर एक मालगाड़ी के टकराने से 3 रेलवे अधिकारियों सहित 8 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त किया। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा। सिक्किम में भूस्खलन के कारण फंसे 2000 पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव कार्य शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए आज शाम बैठक करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी पहल पर दूसरी वार्षिक बैठक आज शुरू होगी और देशभर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।